che è una sua linea e che non è più finita. Dove c'è una tappa? Fai che? Questo è un terzo di calcio. Terzo di calcio.
हम परीक्षा में पास होते हैं इस बात के तो श्रेय जाना चाहते हैं, हम उपहार को स्वीकार करना चाहते हैं,
लेकिन दो समय पर हम दंड को भी शायद स्वीकार करते हैं। हम अपने कर्मों में से आगे कर्मों का फल को स्वीकार करते हैं, आगे कर्मों का फल दूसरे पर डालना चाहते हैं। अगर हमें कोई उपहार स्वीकार करने की लड़ाई है तो हमें गलती होने पर दंड स्वीकार करने की भी ललक होनी चाहिए। ये आदत हमारे भीतर हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे झूठा बनाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने दोषों के लिए दंडित होना नहीं सिखाते हैं। हम दोषों से जो सबसे दंडित होने से रहते हैं, हम तो क्षमा हमसे माफ की अपील करते हैं, बैठ की भीख मांगते हैं। क्या आवश्यकता है, मैंने अगर कोई पाप कर्म किया है तो उसके लिए मुझे दूसरे की दया की क्या आवश्यकता है, दूसरे की क्षमा की क्या आवश्यकता है, उसके लिए तो दंड बन जाते हैं। ये साहस बहुत कठिन, अपने कर्मों के लिए मैं पनिशमेंट देने की तैयार हूं। शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने दार्शिव को तपस्या कही है, दुनिया तो उसकी दंड मानती है, हमने उसे तपस्या कहा है। कर्म की निद्रा के लिए होता है प्रायश्चित, प्राय चित्त शुद्धि यश विधि के साथ प्रायश्चित, जिसके करने से जिस प्रक्रिया के करने से मेरा चित्त निर्मल हो जाता है और मेरे आसपास के लोगों का चित्त भी निर्मल हो जाता है। जिनसे दोष हुआ था इन्होंने अपने उस दोष का पश्चाताप कर लिया है, उसे रिफाइन करने की प्रक्रिया कर ली है, तो सारे लोग भी हमारे प्रति प्रसन्न है और हमारे चित्त का निर्मल हो ही गया। ये प्रक्रिया है, अपनी विपत्ति को अपना दोष मान करके उस विपत्ति को बचने का उपाय नहीं खोजना, बल्कि उस विपत्ति को स्वीकार करके उसे अपने जीवन को रिफाइन करने का एक साधन मानना। जिन्हें वो कहा करते थे कि दोष तो मुझे रिफाइन करने के लिए है, दुख तो मुझे एक तपस्या की तरह, जैसे कि अग्नि में प्रवेश करने से कोई चीज निर्मल हो जाती, पवित्र हो जाती है, उसमें प्रकृति निरीक्षण वो बढ़ेगा जो इंद्र में वही बढ़ेगा। दुख की आग में हमारा देश विराज नहीं होता, जो जो खोटे कर्म है वे ही कहेंगे और कुछ नहीं। अगर हम दुख को समता पूर्वक ये कहने में जितना आसानी न भैया होते ही कहते ही नहीं, अब बहुत आसानी से कह रहा हूं मैं, पर भीतर भीतर सोच रहा हूं कि क्या क्या है, मेरा सोचे तो कितना कठिन काम है, लेकिन क्या करें, करना तो अपन से ही पड़ेगा। कोई अपने लिए कर देगा तो अपन दूसरे से बाकी अपनी कर देते हैं, आवाहारा कर देते हैं, लेकिन ये किसी के ये होगा ही नहीं। भगवान आदमी पानी भी अगर चाहे कि हमारे भीतर के दुखों और सुख से हमें निजात दिला दे रहे, जो सिर्फ विदेश दे सकते हैं, तैयारी और शुरुआत हमें खुद करना। उनके मोक्ष जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा, उनके मोक्ष जाने से हमारे भीतर मोक्ष की ललक को जाग सकती है, तो ऑक्सीजन मालूम कर सकता है कि वे कैसे गए हैं, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा, प्रक्रिया तो शुरू हमें ही करना। ये इतना स्वाधीन है, हमें इस पर गौरव होना चाहिए कि हमारे दर्शन में इतनी स्वाधीनता, किसी पर हम पराश्रित नहीं, परावलंबी नहीं। हम जिस दिन चाहें उस दिन इस प्रक्रिया को शुरू करके और अपने आप को बदल सकते हैं, और उसके बाद द डिवोशन टूवर्ड्स द यूनिवर्सल ट्रुथ। अगला काम हमें क्या करना है, जितनी भी यूनिवर्सल सच्चाई है, जितनी भी एक सामान्य नॉर्मल जो सच, जो विश्वव्यापी सच है, उसको हम क्या समर्पित हैं, उसके प्रति उसको स्वीकार करते हैं। कोई पहले जैसी चीज नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, अरे भैया जन्म लिया है तो मरण होगा, कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, संयोग है तो वियोग होगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम क्या कोई बन लीजिएगा, आप एकदम लहराते हुए थे, बिल्कुल मत घबराइए, अपन एक ही चीज को क्लियर करते चले जाएंगे और अपने जीवन में भी उसको क्लियर करते। हम जन्म में जितना हर्ष मानते हैं, हमें मरण में भी उतना ही हर्षित होना चाहिए। क्या ऐसा है, और यदि हम मरण में दुखी होते हैं तो खड़ा करके हमें जन्म के तरह भी दुखी होना, दोनों में समानता, और या फिर सुख और दुख दोनों नहीं करना चाहिए। इसमें जो है
अगर आपको फ्री डिवोर्स है, आप
अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के प्रति
तो संयोग में आप प्रसन्न होते तो गुरु में भी अपनी प्रसन्नता कायम रखिए, अगर आप गुरु में दुखी होते तो संयोग में भी अपना दुख कायम रखिए।
लेकिन नहीं रख सकते हम, न दुख कायम रख सकते न सुख, क्योंकि रखा नहीं जा सकता। हम क्या कायम रख सकते हैं? शांत रख सकते हैं, समता कायम रख सकते हैं सुख और दुख में। लेकिन दुख के अवसर पर सुखी हो और सुख के अवसर पर दुखी हो, ये मामला तो और ज्यादा उलझे हुआ। ये तो बहुत परिश्रम का काम है, और ये कला ही नहीं दी है, ये उनकी कला, ये तो अभिनंदन होने की कला। वो नहीं कर सकते हम नॉर्मल नॉर्मल हम सुख और दुख में हर से विशाद करने से नॉर्मल, लेकिन उस समय भी हम समता रखना सीख लें तो सुख के अवसर और दुख के अवसर पर, यदि संयोग और वियोग के अवसर पर, जन्म और मरण इन दोनों के अवसर पर, दोनों को हम स्वीकार कर सकते हैं। डेनाइल ऑफ रियलिटी से बचना है। ये साइको मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, डेनाइल ऑफ रियलिटी। वास्तविकता से पलायन हमको हमारे माता पिता सिखाते हैं बचपन से। ध्यान रखना, हम सब भी उसी में हैं। हमको हमेशा वास्तविकता से तुम्हारे पिता नहीं रहे, कई दिन तक मत बताओ। हम वास्तविकता से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता का सामना करने का साहस दिखाना चाहिए कि समझो तुम वास्तविकता ये है। आज जिस संयोग से खुशी हो रहा है, कल के दिन ये तय इसका वियोग होगा। तैयारी है चयन करने की, पूरी संयोग में हर्षित हो, वरना हर्षित होने की कोई आवश्यकता। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है, कांच का सामान लेके घर वापस लौटता था। कांच का सामान कैसे खरीदते हैं? कांच का सामान यही सोच के खरीदते रहा कि कभी नहीं टूटेगा, मैंने खरीदा कभी नहीं टूटे। मैं भीतर ढाक करके देखे, ऐसे तो लगता है कभी नहीं टूटेगा। और उसमें गारंटी भी ले लेते हैं, साल भर की तो दो कम से कम, हम पैसे पर भी नहीं टूटे। ऐसी गारंटी ऐसी चाहिए तो ऐसी है। कांच की नजाकत तो इसमें है कि वो दे और टूट जाए, न पत्थर और कांच में क्या फर्क है। लेकिन इस वास्तविकता से हम पलायन करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी शायद ऐसा ही सोच करके रास्ते से बड़े सहाय करके बात पर लिखा रहता है, ग्लास क्लियर केयरफुली हैंडल, और रेयर बने रहते हैं, उनका हाथ करते हैं बॉटल टूट जाएंगे। यही ना लोगों पर गार्डन पर लिखा रहता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि वास्तविकता से पलायन कर रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप गर्दन में कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम उन चीजों को जो चाहिए हैं हम संभालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको संभाले, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको तो ध्यान में रखें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कपड़े एक दिन गंदे हो जाए ना, इसलिए गंदे बने रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि साफ करते समय ध्यान रखो कि फिर गंदे हो जाए। अगर वो गंदे हो जाए तो मैं दुखी नहीं हूं, मैं कुछ ठीक है। गंदे हो जाए तो मैं धोने का इंतजाम करूं, कोई मेरे दुखी होने की तो कोई आवश्यकता है। ये एनालाइसिस हमें खुद करना, और वो बात जो वापिस लौट रहा है और उसे धक्का लगा और उसका पूरा कांच का सामान नीचे ले गया और टूट गया, सारी नींद खड़ी होनी जा रहा था। क्या हुआ क्या हुआ? सब देख रहे हैं उसको, तो मालूम वो कहता क्या कहता है? यू डू नॉट सी एनी फूड बिफोर मी, आपने इससे पहले कोई मूर्ख नहीं देखा मेरे से पहले जो अपना सामान तोड़ के ऐसा खड़ा हुआ है आपका वक्त। लोग बड़े शक्ति में आ गए, जिसको दबाना चाहिए था, जिसको तो उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन धक्का आया। और ये जो ऐसी बात कह रहे, वो मानो क्या कह रहा था कि मैं अभी तक तो कितना मूर्ख था ये सोचता था कि ये कांच का सामान कभी नहीं टूटेगा। आज मुझे वास्तविकता मान ये तो टूट सकता है, और टूट गया तो मैं भी इसे देख रहा हूं, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे पहले मूर्ख को आपने क्या पहले नहीं देखा। लेकिन वो शायद बहुत बड़ा महसूस दे रहे हैं कि हम सब भी कभी कभी ऐसी ही मूर्खता से घिर जाते हैं, हमारी बुद्धिमानी कहां चली जाती है उन क्षणों में, हम वास्तविकता का ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं और सुख दुख उसमें से निकालते हैं। और घर बांधता है वो सारे लोग उसके प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग ऐसे तो करते हैं, कोई बात नहीं, डांट बड़ी, टूट गया तो टूट जाने दो, लेकिन वो देखते हैं कि इसको तो कोई दुख नहीं, ये तो बिल्कुल प्रसन्न है चित्त है, तो जरा गड़बड़ हो गई। फिर अगर कोई ऐसा है अन्याय में यहां आ जाए तो तुम गड़बड़ में कर जाते, अगर कोई दर्शक पर मुस्कुरा दे तो तुम कहेंगे कि याद करवाओ गड़बड़ हो गई। हाँ देखना, और ऐसे उनके मन में भी हाँ उनके घर के लोगों ने कहा हुआ क्या, किसी ने धीरे से कहा कि सुनो हो सकता है कि इतना कीमती सामान टूट गया है इसलिए इतना मुस्कुरा है, अगर जरूर पूछना मेरी बात, उसको धीरे से ले गया और कुछ पहले उसके प्रति धीरे से बुझाना उसको क्यों क्या हुआ कैसे हुआ, शायद उसको वो घटना याद आए, वो घटना याद आने से उसको सॉरो फील हो और दुखी हो शायद वो, लेकिन गायब हो वो तो मुस्कुरा तो चला जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ बोले तो उसने कहा कि बोलने का क्या है इसमें, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि कांच का सामान दुकान से घर तक जा रहा था आधे बीच में टूटा, आधे बीच तक कैसे आ गया, मैं तो इसलिए खुश हूं, वो तो उसी क्षण टूट सकता, वो तो जिस क्षण मैंने हाथ में लिया था उसी क्षण में टूटना शुरू हो गया था। ये क्या संसार की चीजों के इस तरह टूटने और गले आने पर हम कैसे ही बने रह सकते हैं, क्या शास्त्र और क्षण मंदिर का गुरु हम पहुंच पाएंगे, क्या संयोग और योग की वास्तविकता को हम अभ्यास कर पाएंगे पालने का, क्या हम जन्म मरण दोनों के बीच तटस्थ दूसरे के जन्म मरण में तटस्थ रह सकते हैं, रहते भी हैं, मैं वो नहीं कह रहा, अपने जीवन में होने वाले जन्म मरण, अपने जीवन में आने वाले संयोग योग, अपने जीवन में होने वाले क्षण मंदिर और शाश्वतता के अनुभव, उन क्षणों में हम शाश्वत को शाश्वत माने और क्षण भंगुर को क्षण भंगुर माने, लेकिन क्षण भंगुर को टूट जाने पर दुखी ना हो तभी मानना कि हमने क्षण भंगुर को क्षण भंगुर माना था, वरना अगर हम दुखी हो गए हैं तो हमने उसको कारण माने। मैं आखिरी बार इसी को करूं, मैं तो सोच रहा था कि ये आखिरी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज अपन इसी को आखिरी मान लेते हैं, अभी और शेष है, अभी और आगे बढ़ना है, इतने में नहीं रुकना है, यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो शायद हम एक दिन बहुत सारी चीजों को इसी तरह अपने जीवन में प्रयोग में ला करके अभ्यास में ला करके और जरूर अपने जीवन को बदल पाएंगे। मैं तो यही भावना बताऊं कि हम सब लोग और इसी तरह थोड़ा सा समय अपने जीवन का निकाल करके सुबह शाम थोड़ी देर तक हम यहां बैठते हैं एक साथ, कितनी देर लेते हैं, कौन किसके साथ रह सकता है, जितनी देर हम एक साथ बैठते हैं उतनी देर तो हम इस चीज का अभ्यास करें, लेकिन इसके बाद फिर हम जब भी जहां भी हमें अवसर मिले वहां इस चीज का अवसर अभ्यास निरंतर बनाए रखें। जब भी हम नए कपड़े शरीर पर धारण करें हमें ध्यान आ जाए कि ये थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, उसके बाद गंदे हो जाना है, एक दिन फट करके नष्ट हो जाएंगे, मैं क्या सोच के इनको ग्रहण कर रहा हूं, खाना खाऊं खूब आनंद देकर के खा रहा हूं, लेकिन ये जो चीज जो जिब्बा पर मुझे आनंद दे रही है मेरे गले में नीचे उतरने तक, फिर ये चीज खराब हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहा हूं, बस इतना ही, खाते समय, कपड़े पहनते समय, नहाते धोते समय, किसी के साथ प्रेम से बैठते समय भी याद रहे कि थोड़ी देर का संयोग है, उसके बाद ये अपनी तरह ये अपनी तरह, इस तरह यदि सुबह से शाम तक इतना अभ्यास कर जाए फिर देखिएगा क्या मजा आता है,
फिर देखेगा कि जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। हम जहां है वहीं पर रह जाएंगे और उसका आनंद भी सकेंगे, क्योंकि हम से ठीक से जीना सीख लेंगे। ये प्रक्रिया हमें ठीक से जीना सिखाने की प्रक्रिया है, जो हमारे आचार्य भगवंतन हम पर उपकार करके हमें दी है। हम जरूर उसके लाभ लें और आचार्य भगवंतों के उस उपकार के प्रति, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता रोज रोज ज्ञापित करें, इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरु विद्या स्वागत है।
Jai Guru Vaishnava Jai Guru Vaishnava Jai Guru Vaishnava।